ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को उजागर करना और वैश्विक तथा घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इस सम्मेलन के साथ ही पहले से चल रहे रोड शो, गोलमेज बैठकें भी सम्पन्न हो जाएंगे। डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आज मॉस्को पहुंचा। ये दल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत की वैश्विक मुहिम का हिस्सा है। सुश्री कनिमोई ने मीडिया को बताया कि रूस भारत का एक प्रमुख भागीदार देश है और दोनों देशों ने राजनयिक तथा व्यापारिक मुद्दों पर हमेशा मिलकर काम किया है। सुश्री कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लाटविया का भी दौरा करेगा। मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष एनआईए अदालत गठित की गई है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से चुराचांदपुर जिले में एक सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है। अधिसूचना के अनुसार पूरा मणिपुर इस अदालत के कार्यक्षेत्र के दायरे में होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए 3 मई 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा से जुड़े तीन प्रमुख मामलों की जांच कर रही है। इनमें जिरीबाम में 6 महिला और बच्चों की अपहरण के बाद हत्या का मामला शामिल है। मणिपुर में इस वर्ष 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है और राज्य विधानसभा भंग है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य लोगों पर किरू पनबिजली परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने किरू पनबिजली परियोजना के निर्माण में 2200 करोड़ रुपए के ठेके में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। पिछले वर्ष सीबीआई ने संबंध में दिल्ली और जम्मू में 8 स्थानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने जिन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है उनमें चिनाब घाटी बिजली परियोजना के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, परियोजना के अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का ठेकेदार शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अमेरिका के गृह विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने संदर्भ में विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अन्य देशों के छात्रों का नामांकन एक विशेष सुविधा है, न कि अधिकार। वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी के अनुसार सकल रोजगार में वृद्धि के कारण भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 0.2% अधिक रहने की संभावना है। दूसरी तरफ एजेंसी ने चीन के विकास अनुमान को घटाकर 4.3% कर दिया है, जो पहले 4.6% था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पिछले महीने जारी रिपोर्ट के अनुसार भी भारत सबसे तेज गति वाला प्रमुख देश बना हुआ है और यह अगले 2 वर्ष में 6% से अधिक की वृद्धि वाला एकमात्र देश होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 120 से अधिक देशों के विकास पूर्वानुमान में कटौती की है। अमेरिका और ईरान के बीच आज इटली की राजधानी रोम में 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। ये वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध और अमरीकी प्रतिबंध हटाने के लिए हो रही है। वार्ता ओमान द्वारा कराई जा रही है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के लिए अंडर-19 टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम 24 जून से 23 जुलाई तक के इंग्लैंड दौरे में 50 ओवर का एक वार्म अप मैच, 5 एक दिवसीय और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। FIH प्रो हॉकी लीग की अगर बात की जाए तो यूरोपीय चरण के लिए भी 24 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। ये प्रतियोगिता 7 से 22 जून तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेली जाएगी। भारत का पहला मैच 7 जून को नीदरलैंड से होगा। वहीं दूसरी ओर तजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के साथ 23 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के फुटबॉल मैच के लिए भी राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी गई है।
मौसम विभाग ने गोवा कोंकण में कल तक तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तराखंड में तेज बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं मुंबई में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।